देखिए भाई सबक आगे, वला यतज़व्वजुल मौला अमतहु वलल मरअतु अब्दहा लिअन्न निकाह मा शुरिअ इल्ला मुस्मिरन बिसमरातिन मुश्तरकतिन बैनल मुतनाकिहैन वल ममलूकियतु तुनाफिल मालिकियत फयमतनिउ वुकूउस समरति अला शिरका। भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने आपको मसला बतलाया था कि अगर कोई शख्स किसी हलाल औरत को भी छू लेगा तो इस सूरत में हुर्मत मुसाहरत आ जाएगी। मसलन एक शख्स की बांदी है तो ये बांदी के साथ आका के लिए सोहबत जायज होती है, लेकिन आका ने उसे सोहबत नहीं की तो इस बांदी के उसूल और फुरू अभी भी इस आका पर हलाल हैं। लेकिन जिस वक्त ये बांदी आका को शहवत के साथ हाथ लगा दे या आका जो है वो शहवत के साथ बांदी को हाथ लगा दे बगैर किसी हाइल के, दरमियान में कोई कपड़ा वगैरह ना हो, तो इस सूरत में हुर्मत मुसाहरत आ जाएगी और दोनों के उसूल और फुरू एक दूसरे पर हराम हो जाएंगे। तो इस तरह का छूना ये चाहे मर्द की तरफ से हो चाहे औरत की तरफ से, दोनों सूरतों में हुर्मत मुसाहरत आ जाती है। बल्कि साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि शहवत के साथ देखना ये भी हुर्मत मुसाहरत का सबब बनता है, और वो कब, जब औरत मर्द की शर्मगाह की तरफ देखे शहवत के साथ, या मर्द जो है शहवत के साथ औरत की शर्मगाह की तरफ देखे। भाई और मैंने बतलाया था कि यहां फर्ज से मुराद फर्ज दाखिल है भाई, फर्ज खारिज मुराद नहीं, इसलिए क्योंकि हकीकत के अंदर फर्ज जो है वो दाखिल है, जबकि खारिज वो तो बाज एतबार से फर्ज है बाज एतबार से फर्ज नहीं, तो फर्ज दाखिल का एतबार है क्योंकि हकीकत में वो ही फर्ज है भाई। और फिर मैंने ये भी बतलाया था कि शहवत की कैद जरूरी है भाई, छूते वक्त या देखते वक्त शहवत होगी तो हुर्मत मुसाहरत आएगी, और अगर उस वक्त शहवत नहीं है तो फिर हुर्मत मुसाहरत भी नहीं आएगी भाई। जबकि इमाम शाफई रहमहुल्ला फरमाते हैं कि छूना और देखना शहवत के साथ ये सोहबत के हुक्म में नहीं है, लिहाजा इन दोनों को सोहबत के साथ नहीं मिलाया जा सकता। सोहबत का हुक्म और है और शहवत से देखने और शहवत से छूने का हुक्म और है। मसलन कोई शख्स हज पर जाता है तो हालत एहराम में उसके उस पर बहुत सी पाबंदियां लग जाती हैं, उनमें से एक पाबंदी यह भी है कि वो अपनी बीवी से सोहबत नहीं कर सकता एहराम के दौरान। तो अगर कोई शख्स वुकूफ आराफा से पहले बीवी के साथ सोहबत कर लेगा तो याद रखो उसका हज ही फासिद हो गया, और अब उसको अगले साल फिर आकर इस हज की कजा करना पड़ेगी, और ये जो हज है इसको भी ये छोड़ेगा नहीं, इसी तरह इसके अफाल को अदा करता चला जाएगा। अगरचे हज फासिद हो गया लेकिन इसके अफाल को आखिर तक अदा करता चला जाएगा। इसी तरह एहराम के अंदर बीवी को छूना भी मना है, लेकिन अगर कोई शख्स बीवी को छू लेता है शहवत से वकूफ आराफा से पहले तो इस सूरत में उस पर दम आएगा, एक जानवर की कुर्बानी करना पड़ेगी, उसका एहराम और हज फासिद नहीं होगा। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि शहवत के साथ छूने और शहवत से देखने का वो हुक्म नहीं है जो सोहबत का है। नीज इसी तरह कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत करे तो उस पर गुसल फर्ज हो जाता है, लेकिन अगर बीवी को शहवत से छुए या शहवत से उसकी तरफ देखे तो इस सूरत में गुसल वाजिब नहीं होता। तो देखो दोनों का हुक्म अलग अलग है, लिहाजा शहवत से छूने और शहवत से देखने को सोहबत के साथ नहीं मिलाया जा सकता, इनको सोहबत वाला हुक्म नहीं दिया जा सकता। और नीज वो फरमाते हैं कि रोजे के अंदर देख लीजिए, रोजे के अंदर बीवी से सोहबत मना है, लेकिन अगर कोई शख्स बीवी को शहवत से छू ले या शहवत से उसकी तरफ देखे तो ये मना नहीं है और इससे रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखा, मालूम हुआ शहवत से छूने और शहवत से देखने का वो हुक्म नहीं है जो सोहबत का है, तो लिहाजा इन दोनों को सोहबत के साथ नहीं मिलाया जाएगा। हम जवाब देते हैं कि शहवत से छूना और शहवत से देखना ये दवाई वती हैं, ये ले जाने वाले हैं वती की तरफ, ये वती की तरफ ले जाने वाले हैं, और ये मकाम इहतियात का है, लिहाजा यहां जो वती का सबब है उसको भी वती के कायम मकाम कर दिया जाएगा। इसलिए क्योंकि औरत के हलाल और हराम होने का मामला है तो एहतियात इसी में है कि इसको हुर्मत मुसाहरत का सबब करार दिया जाए भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया था कि शहवत का पता कैसे चलेगा भाई, तो बतलाया औरत के अंदर तो उसकी कोई अलामत नहीं है, हां यह कि औरत दिल में लज्जत महसूस करे और उस मर्द की तरफ उसका दिल माइल हो। जबकि मर्द के अंदर भी बाद उलमा ने इसी तरह लिखा कि वो दिल में लज्जत महसूस करे और औरत की तरफ उसका दिल माइल हो, उससे सोहबत करने की ख्वाहिश दिल में पैदा हो, तो यह मालूम हुआ शहवत है भाई। लेकिन साहिब हिदाया ने बतलाया कि सही कौल यह है कि मर्द के अंदर एक जाहिरी निशानी मौजूद है कि मर्द का आला तनासुल जो है उसमें इंतिशार आ जाए, और अगर पहले से इंतिशार मौजूद था तो उसमें ज्यादती हो जाए, तो यह अलामत है शहवत की और यही मोतबर है, इसी पर फतवा दिया जाएगा। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि फर्ज की तरफ शहवत से देखने के अंदर फर्ज दाखिल मोतबर है भाई, इसलिए क्योंकि फर्ज दाखिल जो है वो है हकीकत के अंदर फर्ज, जबकि फर्ज खारिज वो तो बाज एतबार से फर्ज है और बाज एतबार से फर्ज नहीं है, तो लिहाजा फर्ज दाखिल का एतबार है। और फिर सवाल पैदा होता है कि फर्ज दाखिल पर कैसे नजर पड़ सकती है, तो बतलाया कि आम अहवाल में तो वाकई फर्ज दाखिल पर नजर पड़ने की सूरत नहीं, हां एक सूरत है कि अगर औरत ने कपड़े न पहने हुए हों और वो दीवार या तकिए के साथ टेक लगाकर बैठी हुई हो तो उस वक्त फर्ज दाखिल पर नजर पड़ने का इहतमाल है। और फिर साहिब हिदाया ने आपको यह भी बतलाया कि यह जो शहवत के साथ छुआ और इसके अंदर मर्द को इंजाल हो गया तो फिर हुर्मत मुसाहरत नहीं आएगी भाई। बाज़ उलमा फरमाते हैं बाज़ फुकहा फिर भी हुर्मत मुसाहरत आ जाएगी, लेकिन सही कौल के मुताबिक अगर मर्द को इंजाल हो गया इस शहवत के साथ छूने या देखने में तो फिर हुर्मत मुसाहरत नहीं आएगी। वजह यह कि ये जो शहवत से छूना और देखना था ये पहुंचाने वाला था वती तक, ये सबब है वती का, तो इसलिए हमने इनको वती के कायम मकाम कर दिया। लेकिन जब इंजाल हो गया तो पता चल गया कि ये वाला छूना और ये वाला देखना वती तक पहुंचाने वाला नहीं, क्योंकि इंजाल की वजह से ख्वाहिश और शहवत पूरी हो गई। और बतलाया था वाला हादा इतियानुल मर अतिफित दुबुरी, और इसी पर है औरत के पास आना फित दुबुरी उसके पिछले मकाम में, यानी वो भी इसी तरह है, उसमें भी अगर किसी शख्स ने इस तरह औरत से वती की और उसको इंजाल हो गया तो फिर हुर्मत मुसाहरत नहीं आएगी, और अगर इंजाल न हुआ तो फिर हुर्मत मुसाहरत आ जाएगी, इसलिए क्योंकि अभी तक शहवत और ख्वाहिश पूरी नहीं, तो ये शहवत अभी भी पहुंचा सकती है अगले मकाम में वती तक। बात समझ में आ गई। उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको बतलाया कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक बाइन दे दे या तलाक रजई दे दे और वो औरत अभी इद्दत में है तो इस दौरान ये इस बीवी की बहन से निकाह नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि अभी भी निकाह के कुछ असरात मौजूद हैं, तो अगर ये उसकी बहन से निकाह कर लेगा तो ये पहली बहन में भी निकाह के असरात मौजूद, दूसरी बहन से भी निकाह कर लिया, ये तो जामिअ बैनल उख्तैन बन जाएगा, लिहाजा इसकी इजाजत नहीं है भाई। तो पहली बहन को जब तलाक दे दी है और वो अभी इद्दत के अंदर है उस दौरान दूसरी बहन से निकाह नहीं हो सकता, वो इद्दत के बाद ही हो सकता है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो इद्दत है अगर तलाक बाइन से है, यानी तलाक बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, तो फिर अब इद्दत के दौरान भी उसकी बहन से निकाह कर सकता है। वजह यह कि तलाक बाइन ये जो तीन तलाकें हैं इन्होंने निकाह को बिल्कुल खत्म कर दिया, तोड़ दिया भाई, ये कातिय निकाह हैं। ये क्या है? कातिय। एक तलाक रजई होती है, उसके अंदर इद्दत के अंदर खावन रुजू कर सकता है, वहां दोबारा निकाह की जरूरत भी नहीं, निकाह उसी तरह मौजूद है। हां अगर रुजू न किया तो इद्दत गुजरने के बाद अब निकाह टूट जाएगा, औरत जहां मर्जी चाहे निकाह कर सकती है, लेकिन इद्दत के अंदर खावन रुजू कर सकता है तलाक रजई में। और मैंने बताया रुजू जुबान के जरिए भी हो सकता है और ऐसे किसी ऐसे अमल के साथ भी, किसी ऐसे अमल के जरिए भी हो सकता है जिसकी इजाजत सिर्फ बीवी के साथ है। बात समझ में आ गई। तो रुजू जो है कौल के जरिए भी हो सकता है और फेल के जरिए भी हो सकता है, जबकि तलाक बाइन और तीन तलाकों में तो फिर रुजू की सूरत नहीं होती। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत में निकाह पूरी तरह टूट गए, तलाक बाइन निकाह को कता करने वाली है और इसी तरह तीन तलाकें भी निकाह को कता करने वाली हैं, पूरी तरह उसको खत्म करने वाली हैं, तो लिहाजा इनकी वजह से निकाह पूरी तरह टूट चुका है। और जब निकाह टूट गया, खत्म हो गया, तो अब इसकी बहन से इद्दत के अंदर भी निकाह करेगा तो यह शख्स जामिअ बैनल उख्तैन नहीं बनेगा। यह दो बहनों को एक निकाह में जमा नहीं कर रहा, क्योंकि पहली बहन के साथ तो निकाह बिल्कुल टूट चुका है, खत्म हो चुका है। और फिर वो फरमाते हैं कि आप ए अहनाफ, आप खुद भी तो कहते हैं कि ये औरत जिसको खावन ने तलाक बाइन दी है या तीन तलाकें दी हैं, अगर इसके साथ खावन सोहबत कर ले इद्दत के दौरान, बावजूद इसके कि उसको इलम था ये मेरे ऊपर हराम हो चुकी है क्योंकि मैं इसको तलाक बाइन दे चुका हूं या तीन तलाकें दे चुका हूं, तो ये शख्स उसके साथ अगर खावन इस मोतद्दा के साथ सोहबत कर लेगा तो ए अहनाफ आप भी तस्लीम करते हैं कि खावंद पर हद आएगी, उसे हद जिना लगाई जाएगी। हालांकि हद हद का मामला तो बड़ा नाजुक है भाई, अदना शुबे से भी हद साकित हो जाया करती है। अगर निकाह के कुछ असरात बाकी होते तो फिर तो हद नहीं आनी चाहिए थी भी। हद तो अदना शुबे से भी क्या हो जाती है, साकित हो जाती है। तो अगर निकाह का कुछ असर अभी भी बाकी है, ए अहनाफ आप क्या कह रहे हैं, इद्दत के अंदर निकाह का असर अभी भी बाकी है, लिहाजा इसकी बहन के साथ अभी निकाह नहीं कर सकता, तो फिर अगर निकाह के असरात अभी भी बाकी हैं तो फिर तो इस औरत के साथ अगर खावन जानते बूझते सोहबत भी कर ले फिर भी हद जिना नहीं आनी चाहिए भाई। हद जिना नहीं आनी चाहिए क्योंकि हद जिना तो अदना शुबे से भी खत्म हो जाती है भाई। लेकिन आप भी तस्लीम करते हैं कि इस खावन पर अगर इसने जानते बूझते हुए इलम के बावजूद कि यह मुझ पर औरत हराम है फिर उससे इद्दत में सोहबत कर ली तो उस पर हद जिना आ जाती है। तो ए अहनाफ आपका बयान किया हुआ यह मसला बतला रहा है कि आपके नजदीक भी निकाह पूरी तरह टूट चुका है। बात समझ में आ गई। तो यह इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील थी। उसके बाद हमारी दलील आई तो साहिब हिदाया ने बतलाया कि हमारे नजदीक जो है पहली का निकाह अभी भी मौजूद है, इसलिए क्योंकि उस निकाह के अहकाम अभी भी बाकी हैं। यह इद्दत का नफका जो है, याद रखो ये खावंद के जिम्मे होता है, तो खावंद के जिम्मे नफके का रहना यह अलामत है इस बात की कि निकाह अभी भी बाकी है किसी दर्जे में, क्योंकि नफका तो मनकूहा का आया करता है, गैर मनकूहा का नफका तो खावन पर नहीं आता, लेकिन इद्दत के अंदर खावन पर नफका आ रहा है यह बतला रहा है कि अभी भी ये इसकी मनकूहा है, अगरचे बाज एतबारात से है पूरे तौर पर अब नहीं है। नीज खावन इद्दत के दौरान भी इस मुअतद्दा को घर से निकलने से रोक सकता है भाई। ये रोकने का हक तो खावन को शरीयत ने अपनी मनकूहा के लिए दिया था, लेकिन ये अब तलाक के बावजूद इसको रोकने का हक है, मालूम हुआ ये अभी भी बाज एतबार से क्या है, इसकी मनकूहा है, अभी भी कुछ ना कुछ निकाह के असरात बाकी हैं भाई। और नीस बीवी जब औलाद को जन्म देती है तो वो खावंद की शुमार होती है। ये जो मुअतद्दा है अगर इसने भी इद्दत के गुजरने का इकरार नहीं किया और दो साल से पहले पहले इसने बच्चे को जन्म दे दिया तो वो बच्चा खुद ब खुद इसी खावंद का शुमार होगा। और बच्चा तो किसी शख्स का उस वक्त शुमार होता है जब वो औरत उसकी फिराश हो गई। औरत क्या हो, उसकी फिराश हो। मालूम हुआ अभी भी यह औरत इसकी फिराश है, जब भी तो इस औरत से पैदा होने वाले बच्चे का नसब इस साबका खावन से साबित हो रहा है। और आजाद औरत तो फिराश कब होती है किसी के लिए, जब वो उसकी मनकूहा होती है। बात समझ में आ गई। तो इस औरत का फिराश होना यानी इस औरत से पैदा होने वाले बच्चे का नसब खावन से साबित हो जाना यह इस बात की दलील है कि निकाह के असरात अभी भी बाकी हैं। बात समझ में आ गई। तो जब निकाह के ये असरात बाकी हैं, मालूम हुआ निकाह अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। और बाकी जो आपने कहा था कि ये जो तलाक बाइन है और इसी तरह तीन तलाकें हैं, ये कातिए निकाह हैं, इनकी वजह से निकाह बिल्कुल टूट जाता है। हमें भी आपकी ये बात तस्लीम है कि इनकी वजह से निकाह बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन इनका अमल फौरी नहीं आता, बल्कि इनका अमल इद्दत के इख्तिताम तक के लिए मुअख्खर हो जाता है। कुछ चीजों में हुरमत आ गई, यानी औरत से वती करना हराम है, लेकिन कुछ अहकाम अभी भी उस निकाह के बाकी हैं, जैसे हमने बयान कर दिया। मालूम हुआ इस कातिया का अमल पूरी तरह अभी आया नहीं, बल्कि इद्दत के खत्म होने पर पूरा अमल आ जाएगा और निकाह बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर वो इसकी बहन से निकाह कर सकता है और इसका अमल मुअख्खर हो गया है। आप भी देखते हैं कि ये जो तलाक बाइन वाली मुअत्तदा है या तलाक सलासा वाली मुअत्तदा है, ये आगे निकाह नहीं कर सकती जब तक इद्दत में है। ऐ शवाफे, आप भी तस्लीम करते हैं इद्दत के अंदर औरत निकाह नहीं कर सकती, इद्दत के बाद करेगी जी। तो मालूम हुआ अभी भी पिछले निकाह का असर बाकी है। अगर असर बाकी ना होता तो इसको तो इजाजत होनी चाहिए थी कि इद्दत के अंदर भी जहां चाहे निकाह कर सके भाई। और यहां मैंने आपको बतलाया था कि ये जो फिराश है ये तीन किस्म पर है। फिराश किसे कहते हैं? किसी औरत का मुख्तस होना किसी मर्द के बच्चों को जन्म देने के लिए, या यूं दूसरे लफ्जों में यूं कहो कि उस औरत से जो औलाद पैदा हो उसका नसब साबित हो सके, तो ये क्या कहलाती है? ये उस शख्स की फिराश कहलाती है, उस शख्स का फिराश कहलाती है। और फिराश तीन किस्म पर हैं, एक फिराश कवी है, एक फिराश ज़ईफ है और एक फिराश मुतवस्सित है। फिराश कवी जो है वो मनकूहा का है, जिसे इंसान निकाह करता है। मनकूहा से याद रखो, जो भी औलाद पैदा हो वो खुद ब खुद खावंद की शुमार होती है। और फिराश ज़ईफ जो है वो बांदी है, आका जब कोई बांदी खरीद लेता है वो आका के लिए हलाल है, तो ये बांदी अगर किसी बच्चे को जन्म देगी तो याद रखो ये खुद बखुद आका का शुमार नहीं होगा, बल्कि जब आका इकरार कर ले कि ये बच्चा मेरा है, फिर ये बच्चा आका का शुमार होगा। देखो, बीवी से पैदा होने वाली औलाद खुद बखुद खावंद की शुमार होती है, और बांदी से पैदा होने वाली औलाद खुद बखुद आका की शुमार नहीं होती। तो ये बांदी फिराश तो है उसका, जायज तो है उसके लिए इसे सोहबत, लेकिन ये फिराश ज़ईफ है। और फिराश मुतवस्सित जो है ये उम्मे वलद है भाई, ये बांदी जब बच्चे को जन्म दे दे और आका कह दे कि ये मेरा बच्चा है, तो ये आका की उम्मे वलद बन गई, यानी आका के बच्चे की मां। और बच्चा आका का आजाद है, तो अब आजादी इस बांदी का भी हक बन गई, अब आका के मरने के बाद ये खुद ब खुद आजाद हो जाएगी, इसका बच्चा जो है वो इसको आजादी तक ले जाएगा, वो इसकी आजादी का सबब बन जाएगा। तो लिहाजा ये जो बांदी ने बच्चे को जन्म दे दिया और आका ने कह दिया कि ये मेरी औलाद है, ये बांदी अब इस आका की उम्मे वलद बन गई। अब इस उम्मे वलद से आगे जो भी बच्चा पैदा होगा वो खुद बखुद इसी आका का शुमार होगा, वो खुद बखुद इसी आका का शुमार होगा। लेकिन अगर आका उसका इनकार करना चाहे तो बगैर लियान के भी इनकार कर सकता है जी। बगैर लियान के भी इनकार कर सकता है। जबकि मनकूहा के अंदर खावन जो है उस बीवी से पैदा होने वाले बच्चे का इनकार वैसे नहीं कर सकता, उसको लियान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लियान करना पड़ेगा, और वो भी बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में, यानी इब्तदाई दिनों में जब बच्चे की पैदाइश हुई है उन चंद दिनों के अंदर अगर ये बच्चे के नसब का इनकार करता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो फिर उस वक्त ये लियान कर सकता है और लियान के लिए काजी के पास जाना पड़ेगा। लियान किसे कहते हैं ये अच्छी तरह समझ लो, आगे साहिबे हिदाया भी आपको बतलाएंगे। याद रखो, लियान ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी पर मसलन जीना की तोहमत लगा देता है, या बीवी से पैदा होने वाले बच्चे का इनकार कर देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अब देखो, आम हालात के अंदर अगर कोई शख्स किसी औरत पर जीना का इल्जाम लगाता है तो शरीयत ने कहा है कि चार गवाह लेकर आओ भाई। अब इस आदमी को चार गवाह लाने पड़ेंगे, अगर वो चार गवाह पेश न कर सका तो फिर इस शख्स पर हद कजफ जारी होगी कि इसने एक मुसलमान पाकदामन औरत पर जीना जैसा अजीम बोहतान लगाया, तो इसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे भाई। यह है हद कजा। लेकिन खावंद भाई, खावंद ने अगर बीवी को जिना करते हुए देख लिया तो अब वो चार गवाह कहां से लेकर आए भाई? तो लिहाजा खावंद के लिए यह हुक्म नहीं है कि अब उसको चार गवाह पेश करना पड़ेंगे, बल्कि अब वो काजी के पास जाकर दावा करेगा और फिर वहां काजी उन दोनों में लियान करवाएगा और फिर लियान के बाद खावंद और बीवी के अंदर काजी जुदाई करवा देगा। या अगर खावंद ने बच्चे का इनकार कर दिया, और ये याद रखना बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में ये बच्चे के नसब की नफी हो सकती है, अगर बाद में नसब की नफी करना चाहता है, साल बाद या दो साल बाद जाकर नसब की नफी करना चाहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, फिर नसब की नफी नहीं कर सकता भाई। अगर आपको नसब की नफी करना थी तो बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में आपको ये मुकदमा करना चाहिए था, तो लिहाजा बच्चे के नसब की नफी की सूरत में भी लियान करना पड़ेगा काजी के पास जाकर। और लियान लियान पूरा बाब आगे आ जाएगा, साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि लियान जो है वो चार शहादतों का नाम है, मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से, चार शहादतें जो मुअक्कद होंगी कसम के साथ, यानी उनके साथ कसम भी खाएगा मर्द भी और औरत भी। पहले जो है मर्द चार शहादतें देगा कसम के साथ और यूं कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि वल्लाह मैंने इस बीवी पर, इस औरत पर जो जिना का इल्जाम लगाया है उसमें मैं सच्चा हूं। तो अगर जिना का इल्जाम लगाया है तो ये अल्फाज कहेगा, अगर बच्चे के नसब की नफी करना चाहता है तो यूं कहेगा कि मैं गवाही देता हूं वल्लाह इस बच्चे के नसब की जो मैंने अपने आप से नफी की है मैं इसके अंदर सच्चा हूं भाई। और अगर दोनों इल्जाम लगाए हैं, मसलन सराहतन वो जिना का इल्जाम भी लगा रहा है और बच्चे के नसब की नफी भी कर रहा है, तो दोनों को मिला देगा कि मैं गवाही देता हूं वल्लाह मैंने जो इस औरत पर जिना का इल्जाम लगाया है और मैंने जो इस बच्चे के नसब की नफी की है अपने आप से, इसमें मैं सच्चा हूं। चार मरतबा ये शहादतें देगा और पांचवीं मरतबा में फिर खावंद कहेगा कि मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं इस इल्जाम के अंदर झूठा हूं। फिर उसके बाद काजी जो है औरत से चार शहादतें लेगा और उसमें भी वो कसम खाएगी। औरत कहेगी कि मैं गवाही देती हूं वल्लाह इस शख्स ने मुझ पर ये जो जिना का इल्जाम लगाया है या ये जो बच्चे के नसब की इसने नफी की है इसके अंदर यह झूठा है। चार मरतबा यह शहादतें देगी और पांचवीं मरतबा कहेगी कि मुझ पर अल्लाह का गजब हो अगर यह आदमी अपने इस दावे के अंदर सच्चा है। तो फिर काजी उनके दरमियान जुदाई करवा देगा और उस बच्चे के नसब की नफी कर देगा काजी। अब उस खावंद का बच्चा शुमार नहीं होगा, सिर्फ इस औरत का बच्चा शुमार होगा। बात समझ में आ गई? तो यह है लिहान। तो मनकूहा जो है यह फिराश कवी है, इसके अंदर जो भी बच्चा पैदा होगा खुद ब खुद खावंद का शुमार होगा। और अगर वो बच्चे के नसब की नफी करना चाहता है तो बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई दिनों में नफी कर सकता है और उसमें भी लियान करना पड़ेगा, वैसे बच्चे की नफी नहीं होगी। और फिराशे मुतवस्सित जो है उम्मे वलद है, उससे पैदा होने वाला बच्चा भी खुद ब खुद आका का शुमार होगा, लेकिन वहां आका बच्चे के नसब की नफी करना चाहे तो बगैर लियान के ही नफी कर सकता है। वो कह दे कि मेरा बच्चा नहीं है तो उसका बच्चा शुमार नहीं होगा भाई। और फिराशे ज़ईफ जो है आम बांदी है कि उससे पैदा होने वाला बच्चा खुद बखुद आका का शुमार नहीं होगा जब तक आका खुद इकरार ना कर दे कि ये मेरा बच्चा है। उसके बाद इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जो अपनी दलील में जिक्र फरमाया था कि ए हनाफ तुम्हारे नजदीक भी ये निकाह टूट चुका है जब ही तो तुम कहते हो कि अगर ये शख्स इस औरत से इद्दत के दौरान सोहबत कर लेता है बावजूद इसके कि इसको इलम है कि ये मुझ पर हराम हो चुकी है, तो उस पर आप भी कहते हैं ए अहनाफ कि इस पर हद जिना आएगी। तो आपका इस पर हद जिना को वाजिब करना यह बतला रहा है कि आपके नजदीक में निकाह टूट चुका है। अगर निकाह बाकी होता फिर तो हद जिना नहीं आनी चाहिए थी भाई। निकाह के कुछ भी असरात बाकी होते तो फिर तो शुबा आ जाता और हद अदना शुबे से भी साकित हो जाती है, लिहाजा इस पर हद नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारे नजदीक भी इस शख्स पर हद वाजिब है, यह मसला बतला रहा है कि तुम्हारे नजदीक भी यह निकाह पूरे तौर पर टूट चुका है। तो उसका जवाब दिया साहिब हिदाया ने, दो जवाब दिए, एक मनाई और एक तस्लीमी। मनाई जवाब के हमें आपकी ये बात तस्लीम ही नहीं है कि हमारे नजदीक इस पर हद आएगी। तस्लीमी जवाब कि हां हमें आपकी बात तस्लीम है, हमारे नजदीक भी इस पर क्या आएगी, हद आएगी। तो वो दो जवाब जिक्र करेंगे। पहला जवाब मनई कि हमें आपकी बात तस्लीम ही नहीं कि इस शख्स पर हद आएगी। इमाम मोहम्मद की किताब मबसूद जो है उसकी किताब तलाक से इशारतन ये बात मालूम होती है कि इस शख्स पर हद नहीं आएगी। भाई मालूम हुआ हमारे नजदीक इस पर हद नहीं आएगी, तो लिहाजा आपको ये मसला दलील के तौर पर पेश करना ही सही नहीं है भाई। और दूसरा जवाब तस्लीमी कि हमें आपकी बात तस्लीम है कि इसी मबसूद की किताबुल हुदूद के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह साफ लफ्जों में फरमाते हैं कि इस शख्स पर हद वाजिब होगी, तो हमें आपकी बात तस्लीम है, हमारे नजदीक इस शख्स पर हद आएगी। लेकिन उसकी वजह आगे फिर साहिब हिदायत बतलाते हैं कि हद इसलिए आएगी क्योंकि ये जो खावन की मिल्कियत है औरत पर बाज एतबारात से अभी भी बाकी है और बाज एतबार से खत्म हो गई है। हिल्लत के एतबार से खावन की मिल्कियत खत्म हो गई, यह औरत अब उसके लिए हलाल न रही। जब इसने तलाके बाइन दे दी या तीन तलाके दे दी तो यह औरत अब उसके लिए किसी तरह भी हलाल न रही। जब हलाल न रही और इसने फिर भी सोहबत कर ली जानते बूझते तो लिहाजा जिना पाया गया, और जब जिना पाया जाए तो उस सूरत में हद वाजिब होती है, इसलिए हमारे नजदीक इस पर हद वाजिब होगी क्योंकि हिल्लत खत्म हो चुकी थी। और बाज एतबार से खावंद की मिल्कियत अभी भी खत्म नहीं हुई कि खावंद को इस इद्दत के दौरान नफका भी देना पड़ता है और खावंद उसको घर से निकलने से भी रोक सकता है, और इद्दत के दौरान वो औरत बच्चे को जन्म देगी तो वो बच्चा भी खावंद का शुमार होता है। ये सब चीजें बतला रही हैं कि खावंद की अभी तक मिल्कियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। जब खत्म नहीं हुई तो अब इस औरत की बहन के साथ इद्दत के दौरान निकाह की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अगर निकाह की इजाजत हो जाएगी फिर तो यह जामिअ बैनुल उख्तैन बन जाएगा निकाह के एतबार से कि दो बहनों को निकाह में जमा कर रहा है। पहली में भी निकाह के असरात अभी तक बाकी हैं और दूसरी के साथ भी निकाह कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, जामिअ बैनुल उख्तैन, और वो तो जायज नहीं। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। वला यतज़व्वजुल मौला अमतहु वलल मरअतु अब्दहा لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا بثمرات مشتركة بين المتناكحين। याद रखिए भाई, एक शख्स है उसकी एक ममलूका बांदी है, वो आका अपनी इस बांदी से निकाह करना चाहता है, याद रखो ये जायज नहीं। आका अपनी बांदी से निकाह नहीं कर सकता इसलिए क्योंकि बांदी इसकी ममलूक है, और जब निकाह करेगा तो बीवी बन जाएगी और बीवी मालिकन होती है भाई, बीवी के खावन पर हुकूक होते हैं, तो लिहाजा वो ही बांदी वो ममलूक भी बन गई और मालिकन भी बन गई, और ममलूकियत और मालिकियत के अंदर तो मुनाफात है। एक ही शख्स ममलूक भी हो जाए और मालिक भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आका इससे निकाह करना चाहता है अपनी इस बांदी से तो फिर इस बांदी को आजाद कर दे। जब बांदी आजाद हो गई अब ये इसकी ममलूक न रही, अब इसे निकाह करना चाहता है तो निकाह कर ले। इसी तरह अगर कोई औरत है वो अपने गुलाम से निकाह करना चाहती है, मसलन एक मालदार औरत है उसका एक गुलाम है, अब वो इस गुलाम से निकाह करना चाहती है, नहीं भाई मालिकन अपने गुलाम से निकाह नहीं कर सकती। वजह यह कि गुलाम उसका ममलूक है और जब निकाह करेगा तो ये खावंद बन जाएगा, और खावंद तो मालिक होता है, खावन तो बीवी पर कई हुकूक का मालिक होता है, तो एक ही शख्स ममलूक भी बन गया और मालिक भी बन गया, और यह नहीं हो सकता क्योंकि मालिकियत और ममलूकियत में मुनाफात है भाई। बात समझ में आ गई। हां अलबत्ता अगर निकाह करना चाहती है वो औरत इस गुलाम से तो इसको आजाद कर दे और फिर उसके बाद निकाह करना चाहे तो निकाह कर सकती है। तो कहते हैं वला यतज़व्वजुल मौला अमतहु, और निकाह नहीं कर सकता आका अपनी बांदी से, वलल मरअतु अब्दहा, और ना कोई औरत जो है वो निकाह कर सकती है अब्दहा अपने गुलाम से, लिअन्न निकाह मा शुरिया इल्ला मुस्मिरम बिसमरातिम मुश्तरकतिम बैनल मुतनाकिहैन। लिअन निकाह माशुरिया, इसलिए क्योंकि ये जो निकाह है ये मशरूअ नहीं हुआ, मशरूअ नहीं हुआ यानी शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। इल्ला मुस्मिरम बिसमरातिन मुश्तरकतिन बैनल मुतनाकिहैन, मगर ये कि ये फायदा देता है, अस्मरा युस्मिरु इस्मार का माना है फायदा देना सा के साथ, इल्ला मुसमिरन, मगर ये कि ये फायदा देता है, बिसमरातिन, ऐसे मुनाफे का, मुश्तरकतिन बैनल मुतनाकिहैन, जो मुश्तरक होते हैं दोनों निकाह करने वालों के दरमियान। निकाह जो है इसको शरीयत ने इसलिए जायज करार दिया है, इसको मशरू करार दिया है कि इसकी वजह से ऐसे मुनाफे हासिल होते हैं जो मियां और बीवी के दरमियान मुश्तरक होते हैं भाई, यानी बाज मुनाफे खावन को हासिल होते हैं तो बाज मुनाफे बीवी को हासिल होते हैं। बीवी को देखो, बीवी के नफके का बंदोबस्त हो गया, खावन पर उसका हक है कि वो उसको नफका दे। इसी तरह बीवी के लिए रिहाइश का बंदोबस्त हो गया, खावन पर हक है बीवी का कि बीवी को वो रिहाइश मुहैया करे, और इसी तरह खावन का हक है बीवी पर कि वो जब चाहे अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है। इसी तरह खावन का हक है कि वो अपनी बीवी को घर से बाहर निकलने से मना कर सकता है, और इसी तरह इस निकाह से दोनों को औलाद हासिल होगी। तो देखो, निकाह की वजह से ऐसे फवाइद हासिल हो रहे हैं जो दोनों के दरमियान मुश्तरक हैं, यानी मजमूई एतबार से मुश्तरक हैं। कुछ फवाइद बीवी को हासिल हो रहे हैं और कुछ भी फवाइद खावन को हासिल हो रहे हैं भाई। तो कहते हैं, लिअन्न निकाह मा शुरिया इल्ला मुसमिरन, इसलिए क्योंकि निकाह जो है वो मशरू नहीं हुआ मगर ये कि वो फायदे देता है, बिसमारातिन, ऐसे मुनाफे का, मुश्तरकतिन बैनल मुतनाकिहैन, जो मुश्तरक होते हैं दोनों निकाह करने वालों के दरमियान। तो मालूम हुआ दोनों निकाह करने वाले कुछ मुनाफिया के मालिक बनेंगे, वल ममलूकियत तुनाफिल मालिकियत, और ममलूक होना तो मालिक होने के मुनाफी है। निकाह किससे किया है? बांदी से, वो ममलूक है और ममलूक होने के साथ वो मालिक भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ममलूकियत और मालिकियत में मुनाफात है। एक ही शख्स मालिक भी हो जाए ममलूक भी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी तरह कोई औरत अपने गुलाम से निकाह करेगी तो गुलाम तो उसका ममलूक है, और जब निकाह करेगी तो वो हुकूक का मालिक बन जाएगा। तो एक ही शख्स मालिक भी बन जाएगा और ममलूक भी बन जाएगा, हालांकि मालिकियत और ममलूकियत में मुनाफात है, एक ही शख्स मालिक या ममलूक नहीं हो सकता। ये माना है, वल ममलूकियत तुनाफिल मालिकियत, और ममलूक होना तो मालिक होने के मुनाफी है। फयम तनि वकू समरति अल शिरका, तो मुमतने हो जाएगा कि वो फायदा वाके हो यानी साबित हो अल शिरकती शिरकत के तरीके पर। भाई निकाह की वजह से मियां बीवी दोनों को फायदे हासिल होते हैं, यानी उन फवाइद में दोनों की शिरकत होती है। कुछ फायदे बीवी के हैं तो कुछ फायदे खावंद के हैं, तो दोनों के उन फवाइद में शिरकत होती है। लेकिन यहां जिसे निकाह किया जा रहा है वो बांदी है या गुलाम है, तो बांदी और गुलाम वो तो इनके ममलूक हैं, तो लिहाजा उन फायदों के अंदर वो साथ शरीक नहीं हो सकेंगे क्योंकि ये ममलूक हैं, और जब ममलूक हैं तो फिर वो फायदों के मालिक नहीं हो सकते भाई, क्योंकि इन दोनों में मुनाफात है भाई। ये माना है, फयम तनि वकू समरति अल शिरकती, तो उस फायदे का शिरकत के तरीके पर आना, उस फायदे का शिरकत के तरीके पर वाके होना मुमतने हो जाएगा, यानी उस फायदे में दोनों शरीक नहीं हो सकेंगे। क्यों नहीं हो सकेंगे? क्योंकि ये गुलाम या बांदी ममलूक हैं और ये मालिक नहीं हो सकते। जब मालिक नहीं हो सकते तो उस फायदे में शरीक भी नहीं, उस फायदे का मालिक ही तो बनना था भाई। बात समझ में आ रही है? फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं, वला यतज़व्वजुल मौला अमतहु वलल मरअतु अब्दहा, और निकाह नहीं कर सकता आका अपनी बांदी से और ना कोई औरत अपने गुलाम से। लिया न निकाह मा शुरिया, इसलिए क्योंकि जो निकाह है ये मशरू नहीं हुआ, यानी शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी। मा शुरिया इल्ला मुसमिरम बिसमरात, इनके ये निकाह मशरू नहीं हुआ मगर ये फायदे देता है ऐसे मुनाफे का, मुश्तरकत बैनल मुतनाकिहैन, कि वो फायदे मुश्तरक होते हैं दोनों निकाह करने वालों के दरमियान, यानी दोनों उन फायदों के मालिक होते हैं। वल ममलूकियत तुनाफिल मालिकियत, और ममलूक होना तो मालिक होने के मुनाफी है, एक ही शख्स मालिक और ममलूक नहीं हो सकता। तो फयम तनि वकू समरति अल शिरका, तो फिर वो जो फायदा है वो शिरकत के तरीके पर वाके हो, यानी शिरकत के तरीके पर वो फायदा हासिल हो जाए, ये मुमतने हो जाएगा क्योंकि ममलूक तो उस फायदे का मालिक नहीं बचा। मालिक नहीं बनेगा तो शिरकत तो आ ही नहीं रही। बात समझ में आ गई? यहां सवाल पैदा होता है, सवाल यह कि निकाह की वजह से एक शख्स मनाफिया निकाह का मालिक बनता है और गुलाम और बांदी तो ममलूक हैं, ये तो मनाफिया के मालिक नहीं बन सकते, तो फिर तो बांदी का निकाह सिरे से जायज ही नहीं होना चाहिए, गुलाम का निकाह तो सिरे से जायज ही नहीं होना चाहिए। हालांकि आका की इजाजत से अगर गुलाम निकाह करता है तो हमारे नजदीक उसका निकाह मुनाकिद हो गया, तो ये ममलूक भी हुआ और मालिक भी हो गया। इसी तरह बांदी भी जो है आका की इजाजत से किसी और से निकाह कर सकती है, तो यही बांदी ममलूक भी हो गई और मालिक भी हो गई, क्योंकि बीवी है भाई, और बीवी क्या होती है, मालिक होती है हुकूक की अपने खावंद पर। तो जवाब यह कि हां, कयास तो यही तकाजा करता है कि गुलाम या बांदी जो है इनको इनका निकाह जायज नहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि हाजत थी ये भी निकाह के मोहताज हैं इसलिए इनके निकाह की इजाजत दे दी गई। ये भी क्या है, निकाह के मोहताज हैं, तो इस हाजत की वजह से शरीयत ने इजाजत दे दी। और आपने बज़ाबता पढ़ा है अज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात, कि जरूरत जो है ममनू चीजों को जायज करार देती है, तो यहां भी जरूरत और हाजत की वजह से इनके निकाह को जायज करार दिया गया, लेकिन बहरहाल अपने मालिक के साथ इनका निकाह नहीं हो सकता। भाई साहिब हिदायत ने इसी बात को, इस दलील को इस अंदाज में जिक्र फरमाया कि ये जो निकाह की शरीयत ने इजाजत दी है इस वजह से कि इस निकाह की वजह से ऐसे फवायद हासिल होते हैं जो मियां और बीवी दोनों के दरमियान मुश्तरक होते हैं। निकाह की वजह से ऐसे फायदे हासिल होते हैं जो मियां बीवी के दरमियान मुश्तरक होते हैं, यानी दोनों उन फायदों के मालिक होते हैं। और जब ये बांदी या गुलाम से निकाह किया जाएगा तो ये तो इनके ममलूक हैं, और ममलूक जो है वो मालिक नहीं हो सकता इन्हीं के ऊपर हुकूक का, तो ये ममलूक मालिक नहीं बन सकते। जब मालिक नहीं बन सकते तो उन मुनाफिया के अंदर शिरकत ही नहीं आई। भाई देखिए ना, एक फायदा हासिल हो रहा है, मैं और जैद मिलकर कारोबार कर रहे हैं, तो जब मिलकर कारोबार कर रहे हैं तो जो भी नफा आएगा उसमें हम दोनों शरीक होंगे, लेकिन अगर कोई रुकावट आ जाए कि जो माल आ रहा है जैद उसमें शरीक ही नहीं हो सकता, उसका मालिक ही नहीं बन सकता, तो शिरकत तो खत्म हो गई। बात समझ में आ गई? तो यहां पर भी निकाह की वजह से ऐसे फायदे हासिल होते हैं जिनमें मियां और बीवी दोनों शरीक होते हैं, लेकिन जब इनमें से एक ममलूक है तो वो उस फायदे का मालिक नहीं बनेगा। जब मालिक नहीं बनेगा तो फायदे के अंदर शिरकत नहीं आएगी। हालांकि निकाह की तो इजाजत ही शरीयत ने क्यों दी है कि इसमें फायदे में दोनों शरीक होते हैं। बात समझ में आ गई? तो जब दोनों फायदे के अंदर शरीक नहीं हो सकते तो यह निकाह भी जायज नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, कहते हैं वयजूजु तज़व्वुजुल किताबियाति लिक़ौलिही तआला वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। भाई आगे साहिबे कुदूरी आपको बतलाएंगे कि किताबिया औरतों से निकाह जायज है। किताबिया यानी अहले किताब औरतों से निकाह जायज है, यानी यहूदी और ईसाई जो आसमानी दीन को मानती हैं और आसमानी किताब को तस्लीम करती हैं, इनके साथ निकाह जायज है भाई। जबकि मुशरिक बुतपरस्त या आतिशपरस्त औरतें जो हैं उनके साथ निकाह जायज नहीं जी। उनके साथ निकाह जायज नहीं, जो मुशरिक हैं या बुतपरस्त हैं या आतिशपरस्त वगैरह, इनके साथ निकाह जायज नहीं। तो गैर मुस्लिम औरतों में से सिर्फ जो अहले किताब हैं यानी यहूदी या ईसाई हैं उनके साथ निकाह जायज है। बात समझ में आ गई? और इसी तरह यह भी याद रखना के आका के लिए अपनी बांदी से सोहबत जायज होती है। याद रखना, अगर आका की बांदी गैर मुस्लिम है तो अगर वो अहले किताब से है तो उसके साथ आका के लिए सोहबत जायज होगी, और अगर वो मुशरिका है या आतिशपरस्त है तो फिर इस सूरत में याद रखो उसके साथ आका के लिए सोहबत भी जायज नहीं है। तो मुसलमान के लिए बांदी भी वो वली हलाल है जो या तो मुसलमान हो या अहले किताब हो। भाई तो कहते हैं वयजूजु तज़व्वुजुल किताबियाति, और जायज है निकाह करना किताबी औरतों से, लिकौलिहि तआला अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब। मुहसनात शादीशुदा औरतों को भी कहते हैं और इसी तरह पाक दामन औरतों को भी मुहसनात कहते हैं। तो यहां ये पाक दामन के माना में है मुहसनात। वल मुहसनात मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और वो पाक दामन औरतें, मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, जो उन लोगों में से हैं जो अहले किताब हैं जिनको किताब दी गई। देखा, अहले किताब औरतें जो हैं वो भी इंसान पर हलाल हैं। भाई ये उन औरतों का जिक्र फरमा रहे हैं अल्लाह जिनसे निकाह हलाल है। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, वल मुहसनात मिनल्लदीन उतुल किताब, और वो पाक दामन औरतें जो किस में से हैं, अहले किताब में से हैं भाई। और याद रखो ये जो मुहसनात की कैद लगाई कि वो पाक दामन होनी चाहिए, ये कैद इत्तेफाकी है। मैंने बतलाया था एक कैद इत्तेफाकी होती है, एक कैद एहतराजी। कैद एहतराजी वो है जिसके जरिए किसी से एहतराज किया जाए, किसी को निकालना मकसूद हो। तो यहां पर जो मुहसनात की कैद लगाई गई ये एहतराज के लिए नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई ईसाई या यहूदी औरत बदकार है, जानिया है, उसे निकाह नहीं जायज। नहीं, उसे भी निकाह जायज है, उससे भी निकाह जायज है। तो ये जो मुहसनात की कैद आई ये कैद एहतराजी नहीं है, कैद इत्तेफाकी है। क्या है? कैद इत्तेफाकी है। और इसको इसलिए जिक्र किया क्योंकि आमतौर पर निकाह पाक दामन औरत से ही किया जाता है भाई। तो ये आदतन चूंकि ऐसा होता है इसलिए ये सिफत जिक्र की गई, या औलवियत को बयान किया गया, इस्तेहबाब को बयान किया गया कि अगर ईसाई या यहूदी औरत से निकाह करना हो तो किस किस्म की औरत से निकाह करना औला और अफजल है, पाक दामन के साथ निकाह करना औला और अफजल है भाई। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वल मुहसनात मिनल्लदीन उतुल किताब अयिल आफाइफ। ये अयिल आफाइफ ये माना बयान कर रहे हैं साहिबे हिदाया मुहसनात का। आफाइफ जमा है आफीफा की, आफीफा पाक दामन औरत को कहते हैं। अयिल आफाइफ यानी पाक दामन औरतें भाई। दरअसल साहिबे हिदाया ये मुहसनात का माना अल आफाइफ के साथ बयान करके एहतराज कर रहे हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की तफसीर से। उन्होंने मुहसनात की तफसीर मुस्लिमात के साथ की है कि मुहसनात से कौन मुराद हैं, मुसलमान औरतें, मिनल लदीन उतुल किताब, उन लोगों में से जो अहले किताब, यानी अहले किताब में से जो मुसलमान हो जाएं वो औरतें मुराद हैं। अहले किताब में से जो मुसलमान हो जाएं वो औरतें मुराद हैं। तो साहिब हिदाया ने बतलाया कि नहीं, अल मुहसनात से मुराद मुस्लिमात नहीं है बल्कि पाक दामन औरतें हैं। वजह यह कि मुहसनात का तर्जमा मुस्लिमात के साथ अगर किया जाए तो मीनल लदीन उतुल किताब की कैद बेफायदा हो जाएगी। मीनल लदीन उतुल किताब की कैद बेफायदा हो जाएगी, इसलिए क्योंकि क्या तर्जमा हुआ, और वो मुसलमान औरतें, मीनल लदीन उतुल किताब, जो किसमें से हों, अहले किताब में से, यानी अहले किताब में से जो औरतें मुसलमान हो जाएं वो भी तुम्हारे लिए हलाल हैं। हालांकि मुसलमान होने वाली औरत चाहे पहले अहले किताब थी, चाहे पहले मुशरिका थी, चाहे पहले आतिशपरस्त थी, चाहे बुतपरस्त थी, जो भी थी, जब एक दफा औरत मुसलमान हो गई है वो तो हर हाल में मुसलमान के लिए हलाल हो गई भाई। तो मालूम हुआ मुहसनात से मुस्लिमात मुराद नहीं है, वरना तो मिनल लदीन उतुल किताब की कैद बेफायदा हो जाएगी। जब मुसलमान हो जाएं तो हर एक के साथ निकाह जायज है। बात समझ में आ गई। तो साहिबे हिदाया फरमाते हैं आयिल आफाइफ यानी पाक दामन औरतें, वला फर्क बैनल किताबियतिल हुर्रति वल अमति अला मा नुबय्यिनु इंशा अल्लाह। साहिब हिदाया आपको बतला रहे हैं कि किताबिया आजाद और बांदी के दरमियान कोई फर्क नहीं। इस आयत से इतना पता चल गया कि अहले किताब औरतें भी मुसलमान के लिए हलाल हैं। अब चाहे वो आजाद औरत है अहले किताब या बांदी है, दोनों का एक ही हुक्म है। इस आयत से पता चल गया अहले किताब औरतें मुसलमानों के लिए हलाल हैं। तो चाहे वो आजाद औरत है उससे मुसलमान निकाह करना चाहता है, यहूदी या ईसाई है और आजाद औरत है, मुसलमान उससे निकाह करना चाहता है, कर सकता है। और इसी तरह अगर वो ईसाई या यहूदी बांदी है और उसके साथ मुसलमान निकाह करना चाहता है तो जायज है, क्योंकि बांदी और आजाद में इस मामले में कोई फर्क नहीं है। बस अहले किताब औरत हलाल है इतना पता चल गया। अब चाहे वो आजाद हो या बांदी, दोनों का यही हुक्म है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, अहले किताब बांदी के साथ निकाह जायज नहीं। अहले किताब बांदी के साथ निकाह जायज नहीं। दो चार सत्रों के बाद साहिब हिदायत उसकी तफसील बयान करेंगे भाई। तो वहां वो बतलाएंगे कि जो बांदी से निकाह की अल्लाह ताला ने इजाजत दी है ये जरूरत की वजह से दी है, और जरूरत मुसलमान बांदी के जरिए पूरी हो जाती है। मुसलमान बांदी से निकाह कर ले इंसान तो उसकी जरूरत पूरी हो गई, लिहाजा अहले किताब बांदी से उसको निकाह की इजाजत नहीं होगी। जबकि इंद अल अहनाफ चाहे वो किताबिया आजाद हो या बांधी हो, दोनों बराबर हैं, दोनों से निकाह जायज है भाई। कहते हैं वला फर्क बैनल किताबियत हुर्रति वल अमति, और कोई फर्क नहीं है किताबिया आजाद औरत में और किताबिया बांदी के अंदर। अला मा नुबयिनु इंशा अल्लाह, बवजह उस दलील के जो हम बयान करेंगे इंशा अल्लाह। चार पांच सत्रों के बाद साहिब हिदाया फिर बयान करेंगे भाई। आगे देखिए, कहते हैं वला यजूज़ तज़व्वुजुल मजूसियाती, और जायज नहीं है आतिश परस्त औरतों से निकाह करना। मजूसी औरतें भाई जो आतिश परस्त हैं, आग की इबादत करती हैं, और ये आतिश परस्त को याद रखो आजकल पारसी कहते हैं, तो पारसी मजहब की कोई औरत है उसके साथ निकाह जायज नहीं है भाई। कहते हैं वला यजूज़ तज़व्वुजुल मजूसियाति, और जायज नहीं है आतिश परस्त औरतों से निकाह करना। लिकौलिही अलैहि सलाम, हुजूर अलैहि सलाम के इस कौल की वजह से कि आपने फरमाया सुन्नु बिहिम सुन्नता अहलिल किताब। सुन्नु बिहिम, सन्ना या सुन्नु का माना है सुलूक करना, मुआमला करना। सुन्नु बिहिम कि तुम लोग मुआमला करो इन मजूसियों से। सुन्नत अहलिल किताब, अहले किताब वाला मामला, यानी जैसे अहले किताब गैर मुस्लिमों से तुम मामला करते हो, वही उसी किस्म का मामला, उसी किस्म का सुलूक तुम इन मजूसियों से भी करो। लेकिन एक फर्क है कि अहले किताब की औरतों से निकाह जायज है, और इसी तरह अहले किताब का जबीहा भी हलाल है, लेकिन ये जो मजूसी हैं इनकी औरतों से निकाह भी जायज नहीं और इनका जबीहा भी हलाल नहीं। तो बाकी इनके साथ उसी तरह का मामला करो जिस तरह का तुम अहले किताब से करते हो। जैसे अहले किताब को तुम लोग अमान दे सकते हो, वो मामून हो जाता है जब आप उसको अमान दे देते हैं। मसलन दारुल हर्ब से आया, आपने उसको अमान दे दी तो क्या बन गया, मामून हो गया। या इसी तरह अहले किताब जैसे आपके वतन में जिजिया देकर मामून हो जाते हैं, जिजिया यानी सालाना टैक्स देते हैं और फिर वो जिम्मी कहलाते हैं और इस्लामी हुकूमत उनके जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदार बन जाती है। इस्लामी हुकूमत इनके जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदार बन जाती है, इसलिए ये जिम्मी कहलाते हैं। तो जैसे अहले किताब के लिए जिम्मी होना जायज है, इसी तरह इस मजूसी को जिम्मी बनाना भी जायज है। इनके साथ अहले किताब वाला ही मामला किया जाएगा सिवाय निकाह और जबीहे के हलाल होने के। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुन्नु बिहिम सुन्नता अहलिल किताब, कि तुम मजूसियों के साथ वो सुलूक करो, वो मामला करो जो तुम अहले किताब के साथ सुलूक करते हो। गैर नाकिही निसाइहिम वला आकिली ज़बाइहिम, इलावा इसके कि निकाह करो उनकी औरतों से। वला आकिली ज़बाइहिम, और इलावा इसके कि तुम उनके ज़बीहे को खाओ, यानी उनकी औरतों से निकाह करने और उनके जबीहे को खाने के अलावा बाकी मामलात में इनके साथ अहले किताब जैसा मामला करो। नाकिही असल में था नाकिहीना, इसमें फाइल है ना, नाकिहुन निकाह करने वाला, नाकिहून हालत रफी में वो नून के साथ और हालत नस्बी जरी में नाकिहीना, और फिर ये नून जमा का और तस्निया का जो होता है वो इजाफत से गिर जाता है, तो ये नाकिहीना था, फिर नून गिर गया, नाकिहीन ईसाइहिम। इलावा इसके कि उनकी औरतों से निकाह करो। वला आकिली, आकिली ये असल में था आकिलीना, जमा मुजक्कर सालिम है, आकिलूना हालत रफ़ई में और आकिलीना हालत नस्बी जरी में, और फिर नून इजाफत से गिर गया। तो गैर नाकिही निसाइहिम, इलावा इसके कि उनकी औरतों से निकाह करो। वला आकिली ज़बाइहिम, और इलावा इसके कि उनके ज़बीहे को खाओ। आगे देखिए, काला वलल वसनियाति लिकौलिही ताला वला तन्किहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना काला। मैंने आपको बतलाया कि भाई ये मतन से पहले जगह जगह काला जिक्र होगा, और ये अक्सर इबारतें किसकी हैं, कुदूरी की, तो ये काला से साहिब कुदूरी मुराद होंगे, और बाज जगह जामे सगीर से भी साहिब हिदाया मतन लेते हैं, और जामे सगीर इमाम मोहम्मद रहमतुल्ला की किताब है, तो कभी इस काला से मुराद साहिब कुदूरी होंगे और कभी इस काला से मुराद इमाम मोहम्मद होंगे भाई। तो ये जो आगे इबारत आ रही है वलल वसनियाति, ये कुदूरी की इबारत है, तो ये काला के अंदर जमीर किसको राजे, साहिब कुदूरी को। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वलल वसनियाति, और ना ही बुतपरस्त औरतों से। वो औरतें जो बुतों की इबादत करती हैं उनसे भी निकाह जायज नहीं है। लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना, और तुम लोग निकाह न करो मुशरिका औरतों से, हत्ता युमिन्ना, यहां तक कि वो ईमान ले आए। मुशरिका औरतों से भी निकाह जायज नहीं यहां तक कि वो ईमान ले आए। जब वो मुसलमान हो गई अब उनके साथ निकाह जायज है भाई। और हत्ता युमिन्ना, यहां नून मुशद्दद है भाई, तो ये नून सकीला ना समझना भाई। एक तो आमना युमिनू का अपना नून है और एक नून जमा मुअन्नस की जमीर साथ मिल गई, तो दो नून जमा हुए तो उनका इदगाम कर दिया गया, तो क्या बन गया, हत्ता युमिन्ना, यहां तक कि वो औरतें ईमान ले आए भाई। और मैंने आपको बतलाया कि जैसे आतिशपरस्त और मुशरिका औरतों से निकाह जायज नहीं, इसी तरह आतिशपरस्त और मुशरिका बांदियों से आका के लिए सोहबत भी जायज नहीं है भाई। आगे देखिए, वयजूज़ु तज़व्वुजु साबिआति इन कानू युमिनून बिदीनिन व युक़िरून बिकिताब। आगे साबी औरतों का मसला आया। याद रखो साबी औरतें, उनके बारे में इख्तिलाफ है। इमाम साहेब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं साबी औरतों से निकाह जायज है, जबकि साहिबैन फरमाते हैं साबी औरतों के साथ निकाह जायज नहीं भाई। वजह यह कि इमाम साहेब की तहकीक के मुताबिक साबी जो हैं, साबी ये यहूदियों या ईसाइयों से निकला हुआ ही एक ग्रोह है। ये वो लोग हैं जो यहूदी या ईसाई थे और उनसे फिर अलग हो गए, अपना अलग ग्रोह बना लिया, अलग फिरका बना लिया, और ये लोग सितारों की ताजीम करते हैं। आगे चलकर बतलाएंगे साहिबैन के नजदीक ये साबी सितारों की इबादत करते हैं, बाकायदा इबादत। इमाम साहब फरमाते नहीं, वो इमाम साहब की तहकीक के मुताबिक ये सितारों की ताजीम करते हैं, सितारों की इबादत नहीं करते। ये इसी तरह है जैसे मुसलमान बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अब देखो बैतुल्लाह की तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, तो देखो इसमें बैतुल्लाह की ताजीम है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम बैतुल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अगर किसी के जहन में यह बात आती है कि हम बैतुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, बैतुल्लाह हमारा माबूद है, फिर तो वो इस्लाम से ही निकल गया भाई। तो जिस तरह मुसलमान बैतुल्लाह की ताजीम करते हैं, इसी तरह ये साबी भी सितारों की ताजीम करते हैं, और ये यहूदियों या ईसाइयों से जुदा होने वाला एक ग्रोह है, तो ये अहले किताब हैं भाई, और अहले किताब के साथ तो निकाह जायज है भाई। कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वल मुहसनात मिनल लदीन उतुल किताब, तो ये उनमें दाखिल हैं भाई। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, ये साबी जो हैं ये सितारों की बाकायदा इबादत करते हैं, सितारों के लिए जो सजदा करते हैं वो ताजीम के तौर पर नहीं करते बल्कि उनकी बाकायदा इबादत करते हैं, सितारों को अपना माबूद समझते हैं। तो ये मुशरिक हुए, और जब मुशरिक हुए तो इनके साथ निकाह जायज नहीं भाई। देखिए भाई कहते हैं वयजूज़ु तज़व्वुजु साबिआति, और जायज है साबी औरतों से निकाह करना, इन कानू युमिनून बिदीनिन, अगर साबी जो हैं वो ईमान रखते हैं किसी दीन पर, व युक़िरून बिकिताबिन, और इकरार करते हैं किसी किताब का। यानी साबियों के बारे में देखा जाएगा, साहिबैन और इमाम साहब में तो इख्तिलाफ आ गया, इमाम साहब की तहकीक और साहिबैन की तहकीक और, तो इनके बारे में गौर किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये सितारों की सिर्फ ताजीम करते हैं या उनकी इबादत करते हैं, और नीस क्या ये किसी आसमानी दीन को मानते हैं और किसी किताब को मानते हैं या नहीं। अगर आसमानी दीन को और किताब को मानते हैं और सिर्फ सितारों की ताजीम करते हैं तो ये अहले किताब में से हुए, तो इनसे निकाह जायज होगा। और अगर ये सितारों की इबादत करते हैं और कोई किताब वगैरह नहीं मानते, तो मालूम हुआ ये इनके साथ फिर निकाह जायज नहीं, फिर ये अहले किताब में दाखिल नहीं। तो कहते हैं इन कानू युमिनून बिदीनिन, अगर ये किसी दीन पर ईमान रखते हैं, व युक़िरून बिकिताबिन, और किसी किताब का इकरार करते हैं, तो इनसे निकाह जायज है। लिअन्नहुम मिन अहलिल किताबी, क्योंकि अहले किताब में से हैं। व इन कानू याबुदून अल कवाकिबा, और अगर ये लोग सितारों की इबादत करते हैं, वला किताब लहुम, और इनकी कोई किताब नहीं है, तो लम तजुस मुनाकाहतुहुम, तो इनके साथ बाहम निकाह जायज नहीं। لأنهم مشركون کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم اور وہ جو اختلاف نقل کیا گیا ہے صحابی کے بارے میں کس کا صاحبین اور امام صاحب کا کہتے ہیں یہ محمول على اشتباه مذهبهم یہ محمول ہے ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر یعنی ان کے مذہب میں چونکہ اشتباہ ہے اس لیے صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف آیا ہے ان کا مذہب پوری طرح واضح نہیں پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں والخلاف المنقول فیہ محمول علی اشتباہ مذہبہم اور وہ اختلاف جو ان کے بارے میں نقل کیا گیا ہے وہ محمول ہے ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر فَكُلٌ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ فَكُلٌ أَجَابَ تو ہر ایک نے جواب دیا یعنی امام صاحب نے اور صاحبین نے ان میں سے ہر ایک نے جواب دیا عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ اسی کے مطابق جو اس کے نزدیک واقع ہے وَقَعَ عِنْدَهُ اَيْ سَبَتَ عِنْدَهُ جو اس کے نزدیک ثابت ہے امام صاحب کے نزدیک جو ثابت تھا انہوں نے اس کے مطابق جواب دیا کہ یہ اہل کتاب ہیں لہذا نکاح جائز صاحبین کے نزدیک جو ثابت تھا اس کے مطابق انہوں نے جواب دیا کہ یہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں مشرک ہیں ان سے نکاح جائز نہیں یہ معنی ہے فَكُلٌ أَجَابَ عَلَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ تو ہر ایک نے جواب دیا جو اس کے نزدیک ثابت تھا وَعَلَى هَذَا حَالُ ذَبِيحَتِهِمْ اور اسی پر ان کے ذبیحے کا حال بھی ہے ان کے بارے میں دیکھا جائے گا اگر یہ اہل کتاب میں سے ہیں اور ستاروں کی عبادت نہیں کرتے صرف تعظیم کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ حلال ہوگا اور اگر یہ مشرکین میں سے ہیں تو پھر ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا آگے دیکھیے قال ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوج في حالة الإحرام یاد رکھو بھائی محرم وہ شخص جو حالت احرام میں ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام ان دو چادروں کا نام ہے وہ جو حج یا عمرے پر جانے والا دو چادریں باندھ لیتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کا نام احرام ہے نہیں نہیں اس کو بھی ویسے احرام کہتے ہیں لیکن اصل میں احرام انسان کی حالت کا نام ہے کس کا نام ہے حالت کا نام ہے جیسے اس وقت ہم حالت احرام میں نہیں ہیں تو اس کو کہیں گے حلال ہم حلال حالت میں ہیں حلال حالت میں ہمارے اوپر عام چیزوں میں کوئی پابندی نہیں لیکن جب انسان احرام باندھ لیتا ہے یعنی احرام کی نیت کر لیتا ہے حج یا عمرے پر جانے کے لیے تو شرعاً اس پر بہت سی پابندیاں آ جاتی ہیں مثلا وہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتا وہ اپنے بال نہیں کاٹ سکتا اب وہ خوشبو نہیں لگا سکتا اب وہ بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا شہوت سے بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا بات سمجھ میں آ گئی تو دیکھو یہ وہ چیزیں تھیں جو عام حالت کے اندر جائز تھیں لیکن احرام کے اندر ان کی پابندی آ گئی انسان پر یہ پابندی لگ گئی تو اسی احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے کہ مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا عورت کے تو وہی جو عام استعمال کے کپڑے ہیں انہی میں احرام ہو جائے گا لیکن مرد جو ہے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا احرام کے اندر یہ پابندی مرد پر آ جاتی ہے تو لہذا اس لیے وہ دو چادریں باندھتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں شاید انہی دو چادروں کا نام احرام ہے ان چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقت میں احرام اس آدمی کی حالت کا نام ہے جس میں وہ داخل ہو چکا ہے اور اس پر پابندیاں لگ چکی ہیں اب جب تک وہ حج یا عمرہ کے افعال سر انجام دے کر ان کو پورا نہیں کرے گا اور پھر حلال نہیں ہوگا تب تک وہ پابندیاں برقرار رہیں گی بھائی تو اب یہ حالت احرام کے اندر کوئی شخص نکاح کرنا چاہے تو کیا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں تو عند الاحناف یاد رکھو محرم شخص نکاح کر سکتا ہے محرم شخص نکاح کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ نکاح صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے مرد مثلا کہتا ہے کسی عورت سے میں نے تم سے نکاح کر لیا اور وہ عورت کیا کہتی ہے میں نے قبول کیا تو صرف اس ایجاب اور قبول کا نام ہے نکاح بھائی اور جیسے محرم بیع وغیرہ عقد کر سکتا ہے محرم بیع وغیرہ کر سکتا ہے تو جیسے بیع ایک عقد کا نام ہے ایجاب اور قبول کا نام ہے اسی طرح نکاح بھی ایجاب اور قبول کا نام ہے تو جب وہ بیع کر سکتا ہے تو نکاح بھی کر سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک محرم نکاح نہیں کر سکتا بھائی اصل میں اس سلسلے میں اختلاف جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح فرمایا اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں بھائی بعض روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت حالت احرام میں تھے और बाज रिवायात से पता चलता है कि हुजूर अलैहि सलाम उस वक्त हालत एहराम में नहीं थे, हुजूर अलैहि सलाम हलाल थे भाई। तो हमने एहराम वाली रिवायात को तरजीह दी कि हुजूर देखो एहराम में थे फिर भी निकाह फरमा रहे हैं, तो मालूम हुआ निकाह जायज है। और शवाफिया ने उन रिवायात को तरजीह दी जिनसे पता चल रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हलाल थे, तो वो कहते हैं देखा हुजूर हलाल थे उस वक्त निकाह फरमाया है, एहराम की हालत में निकाह नहीं कर सकता इंसान। और भी उनके दलाइल हैं। याद रखिए भाई, साहिब हिदायत का तरीका यह है कि वो किसी भी फरीक के सारे दलाइल जिक्र नहीं करते भाई, कोई एक आध मोटी सी दलील जिक्र कर देते हैं कुरान या हदीस से, और फिर साथ अगर कियास वगैरह से भी यानी कोई अकली दलील भी हो तो उसको भी साथ जिक्र कर देते हैं। तो इसका यह माना नहीं कि उनके पास यही दलाइल हैं और दलाइल नहीं, उनके पास और भी दलाइल हैं। और नीज इसी तरह हमारे पास भी सिर्फ यही दलाइल नहीं है जो यहां साहिब हिदायत जिक्र फरमाते हैं, हमारे पास भी और बहुत से दलाइल होते हैं। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम क्या हुआ, हमारे नजदीक मुहरिम निकाह कर सकता है, हां बीवी से सोहबत नहीं कर सकता, सोहबत एहराम की हालत में मना है, बल्कि शहवत के साथ बीवी को छूना भी मना है, मैंने बतला दिया भाई। लेकिन निकाह वो तो सिर्फ इजाब और कबूल का नाम है, वो एक आकद का नाम है, जुबान से सिर्फ किया जाएगा, उसके करने में कोई रुकावट और मुमानियत नहीं है भाई। काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयजूज़ु लिल मुहरिमि वल मुहरिमति अन यतज़व्वजा फी हालतिल इहरामी, और जायज है मुहरिम मर्द और मुहरिम औरत के लिए कि वो दोनों निकाह करें, फी हालतिल इहरामी एहराम की हालत में। वकाल शाफी रहमहुल्लाह ला यजूज़ु, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जायज नहीं है, यानी मुहरिम मर्द और मुहरिम औरत निकाह नहीं कर सकते। वह तजवीजुल वली मुहरिमी वलीयतहु अला हादल खिलाफ, और वली मुहरिम का निकाह करवाना वलीयतहु अपनी मौलिया का अला हादल खिलाफी, वो भी इसी इख्तिलाफ पर है। यानी जैसे मुहरिम अपना निकाह खुद नहीं कर सकता, इसी तरह अपनी मौलिया का निकाह भी खुद नहीं करवा सकता। भाई देखो, विलायत कहते हैं किसी पर इख्तियार हासिल होना, बाप को शरीयत ने इख्तियार दिया है कि वो अपने नाबालिग बच्चों का निकाह जहां चाहे वो करवा सकता है, इसको कहते हैं विलायत। ये जो किसी दूसरे फर्द पर शरीयत किसी को इख्तियार दे देती है इसको क्या कहते हैं, विलायत। तो जिसको इख्तियार दिया वो कहलाता है वली। तो बाप क्या हुआ, अपनी नाबालिग औलाद पर वली हुआ भाई। और ये वली ये हालत एहराम में है, और ये अपने किसी नाबालिग सगीर या सगीरा का निकाह करवाना चाहता है हालत एहराम में। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जैसे मुहरिम अपना निकाह खुद नहीं कर सकता, इसी तरह वो अपने सगीर या सगीरा का निकाह भी नहीं करवा सकता, उसके लिए ये जायज नहीं है भाई। तो कहते हैं व तजवीजुल वली मुहरिमी वलीयतहु अला हादल खिलाफी, वली मैंने बतलाया भाई जिसको विलायत हासिल हो उसको क्या कहते हैं, वलीयुन। ये सिफत मुशब्बा है फाइल वजन पर, असल में क्या है, वलीयुन फाइलुन, फिर दो या जमा हुई तो या का या में इदगाम कर दिया गया तो क्या बन गया, वलीयुन भाई। और आगे है वलीयतहु, इसी वली की मुअन्नस वलिया है, और ये वलिया याद रखो यहां मौलिया के माना में है भाई। वली किसे कहते हैं, जिसको इख्तियार हासिल है, इसी से मुअन्नस बना लो वलिया भाई, गोलता साथ मिला दो तो इसका भी क्या माना, वो औरत जिसको इख्तियार हासिल है। लेकिन यहां ये वलिया बमाने मौलिया के है, यानी जिस पर इख्तियार हासिल है, यानी जिस पर इख्तियार, एक वो है जिसको इख्तियार हासिल है, एक वो है जिस पर इख्तियार हासिल है। तो यहां वलिया बोलकर मौलिया मुराद है भाई, भाई जिसको इख्तियार हासिल है वो हुआ वली, और जिस पर इख्तियार हासिल हो उसको कहते हैं मौलियुन। मौलियुन इसमें मफूल है भाई, रमा यरमी रामयन फो रामिन वरुमिया युरमा रामयन फदा का मरमियुन मौलियुन, देखा ये इसमें मफूल है भाई, यानी जिस पर विलायत दी गई है मौलियुन, जिसके ऊपर विलायत किसी को दी गई है वो मौलियुन है। तो यहां वलिया बोलकर क्या मुराद है, मौलिया मुराद है भाई। तो कहते हैं व तजवीजुल वली मुहरिमी वलीयतहु, और निकाह करवाना वली मुहरिम का वलीयतहु अपनी मौलिया का, वली मुहरिम अपनी मौलिया का निकाह करवाए वो भी अला हादल खिलाफी, वो भी इस इख्तिलाफ पर है। हमारे नजदीक वली मुहरिम अपना निकाह कर सकता है तो अपनी मौलिया का भी निकाह करवा सकता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक वली मुहरिम अपना निकाह नहीं कर सकता तो अपनी मौलिया का निकाह भी नहीं करवा सकता। लहू, अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं लहू कौलुहु अलैहिस्सलाम। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील हुजूर अलैहिस्सलाम का यह कौल है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यनकिहुल मुहरिमु वला युनकिहु, ला यनकिहुल मुहरिमु, मुहरिम निकाह नहीं कर सकता, वला युनकिहु और न निकाह करवा सकता है। मुहरिम ना तो खुद निकाह कर सकता है और ना किसी दूसरे का निकाह करवा सकता है। तो देखो यहां पर नफी है, एक होती है नफी और एक है नहीं। नहीं वो है जिसमें किसी को किसी काम से रोका जाए, ला तजरिब, तू पिटाई ना कर, ये देखो रोका जा रहा है। और एक है नफी जिसमें एक चीज की सिर्फ नफी को बयान किया जाता है, ला तजरीबु जैदुन, जैद पिटाई नहीं कर रहा, जैद पिटाई नहीं कर रहा, देखा रोका नहीं जा रहा बल्कि सिर्फ बयान किया जा रहा है। तो यहां पर हदीस में जो आई ये है नफी, लेकिन ये नहीं के हुक्म में है। मुहरिम निकाह नहीं कर सकता यानी मुहरिम निकाह न करे, वला युन की हो और ना निकाह करवाए भाई, तो ये नफी किस माना में है, नहीं के माना में है। और याद रखो नफी जो है वो नहीं के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि जब मकाम हो नहीं का और इस्तेमाल कर लिया जाए नफी को तो उसके अंदर ज्यादा जोर आ जाता है, उसमें ज्यादा जोर आ जाता है। देखो मसलन आप किसी से कहते हैं ये काम ना करो, हो सकता है वो करे, हो सकता है ना करे, आपने तो मना कर दिया लेकिन हो सकता है वो करे, हो सकता है ना करे। लेकिन जब आप नफी करते हैं भाई इस काम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, देखा आपने रोका नहीं है, रोका नहीं है, आपने सिर्फ नफी बयान किया, इस काम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, देखो इसके अंदर जोर ज्यादा है रोकने का। बात समझ में आ गई कि कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई सूरत ही नहीं है इस काम के करने की भाई, तो इसके अंदर ज्यादा जोर और ताकीद होती है। तो हुजूर फरमाते हैं ला यनकिहुल मुहरिमु वला युनकिहु, ना तो मुहरिम निकाह कर सकता है और ना किसी दूसरे का निकाह करवा सकता है। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना मारुविया अन्नहु अलैहिस्सलाम तज़व्वज बिमैमूनत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहुवा मुहरिमुन। हमारी दलील वो हदीस है जिसकी रिवायत किया गया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाया उम्मुल मुमिनीन हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की खाला थी भाई। तो कहते हैं मारुविया अन्नहु अलैहिस्सलाम तज़व्वज बिमैमूनत वहुवा मुहरिमुन, कि वो जो रिवायत किया गया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया वहुवा मुहरिमुन, इस हाल में कि हुजूर मुहरिम थे, देखा हालत इहराम में निकाह फरमाया। वमा रवाहु महमूलुन अलल वक़्ई, अब जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील का। वमा रवाहु, और वो हदीस जिसको रिवायत किया इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने, महमूल उन अलल वती, वो महमूल है वती पर, यानी वहां निकाह से वती मुराद है। ला यनकिहुल मुहरिमु, मुहरिम वती नहीं कर सकता, सोहबत नहीं कर सकता, और ये तो हम भी कहते हैं भाई आकद कर सकता है क्योंकि वो तो सिर्फ इजाब और कबूल का नाम है, उसमें तो कोई ममनू चीज नहीं, जुबान से सिर्फ निकाह करना है और बाकी वती एहराम के अंदर मना होती है तो उससे मना किया जा रहा है हदीस के अंदर। और आप पढ़ चुके हैं शुरू में, मैंने आपको बतलाया था कि निकाह का लुगवी माना क्या है, बाजों ने कहा इसका लुगवी माना वती के हैं और बाज के नजदीक इसका लुगवी माना आकद के हैं, ये जो आकद किया जाता है इजाब और कबूल। तो मालूम हुआ निकाह का लुगवी माना वती भी है, तो यहां ये वती के माना में है। तो अब हमारे नजदीक हदीस का तर्जमा सुनो भाई, ला यनकिहुल मुहरिमु, मुहरिम वती नहीं कर सकता, वला युनकिहु और न वती करवा सकता है, न खुद वती कर सकता है और न वती करवा सकता है। अब सवाल पैदा हुआ खुद वती न करना ये तो मालूम है जाहिर है माना, लेकिन वती करवा नहीं सकता इसका क्या माना हुआ? तो उसका जवाब भी देते हैं शारहीन भाई, वो कहते हैं कि यहां वती करवाने से मुराद है वती पर कुदरत देना, मुहरिम न खुद वती कर सकता है, न वती पर कुदरत दे सकता है, न वती पर कुदरत दे सकता है। तो सवाल यह माना आपने कहां से निकाल लिया कि कुदरत नहीं दे सकता? कहते हैं भाई देखो, ताइमा यतामु तामन का माना है खुद खाना खाना, और अतामा युतइमु इतआम का माना है दूसरे को खाना खिलाना। कोई शख्स आकर कहता है भाई मैंने फुलां को आज खाना खिलाया, तो आप उसका क्या माना समझते हैं कि इसने एक एक लुकमा तोड़कर उसके मुंह में डाला? नहीं, बल्कि उसने उसको खाने पर कुदरत दी, ताम लाकर उसके सामने रख दिया कि लो खाओ भाई। तो खाने पर कुदरत देने के लिए आता है इताम, दूसरे को खिलाना। बात समझ में आ गई? यहां भी अन कहा युनकिहु का क्या माना है? वती करवाना, यानी दूसरे को वती पर कुदरत देना। यानी मुहरिम न खुद वती कर सकता है, न दूसरे को वती पर कुदरत दे सकता है। यानी मियां बीवी एक दूसरे को वती पर कुदरत नहीं दे सकते जब हालत एहराम में हो। भाई बात समझ में आ गई? तो एक ये जवाब। तो कहते हैं वमा रवाहु महमूलुन अलल वती, और वो हदीस जिसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रिवायत किया वो वती पर महमूल है, उसके अंदर निकाह से क्या मुराद है? वती मुराद है। या हम ये कहते हैं कि अगर निकाह से निकाह ही मुराद ले लें, वती मुराद ना लें बल्कि अकद ही मुराद लें, तो इस सूरत में इसमें औलवियत की नफी की जा रही है, अफजलियत की नफी की जा रही है कि मुहरिम के लिए निकाह करना अफजल नहीं है, औला नहीं है, हलाल होने के बाद निकाह करना चाहिए। तो सिर्फ अवलवियत की नफी है जी। इसका यह माना नहीं कर ही नहीं सकता, करेगा तो हो जाएगा लेकिन औला और बेहतर नहीं है भाई कि मुहरिम निकाह करे या निकाह करवाए। भाई बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।